शास्त्रों के मूल वेद वेदांत परिषद के मूल कौन है, जहां पर स्मृति और श्रुति दोनों में विवाद हो तो वो कौन सा मंत्र है? क्यों स्मृति स्मार्ट ऋषियों के बनाए हुए हैं ना? वो कुछ चीज अनुभव करके अपने शब्दों में लिखा है, उस रूपम प्रमाद हो सकता है, किंतु भगवान के जो बतलाए हुए हैं उनमें कोई चीज नहीं, इसलिए वेद सबसे अधिक है। वेदों का विस्तार एक महानुभाव नारायणी स्वयं मंथन करके उसके असार चीजों को दूर करके श्रीमद भागवत रूप में उसको स्थापित किया, इसलिए निर्मल पुराण। इसलिए जितने भी प्रकार के पुराण हैं, जितने प्रकार के वेद परिषद हैं, सब में प्रमाणित है श्रीमद भागवत का वाक्य। यदि वो ठीक कहते हैं परमार्थ के विषय, ये परमार्थ का विषय है, तब तो उस पर हम प्रमाण कर महाप्रभु जी यही कहते हैं ने? जब शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्त के काम आचार न सत्सिद्धि आत्मोति न सुखम न परां मति गति। जब शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधियों को छोड़ करके एकांतिक भक्ति भी करते हैं, उत्पात भक्ति अनन्य कर रहे हैं, पूजन खूब कर रहे हैं, बिना देवताओं की उपासना किए हुए मुख में अन्न जल चाहे संध्या तक हो जाए नहीं ग्रहण करते, रात रात भर जागरण करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु शास्त्रों के अनुकूल नहीं करते तो क्या होगा? उत्पात ही रही, उत्पात हो जाएगा। यहाँ पर वही करें, जब शास्त्र ये गीता करें, जब माने जो लोग शास्त्रों की विधियों को छोड़ करके कामाचार पर स्वतंत्र अपनी इच्छा से जो करते हैं, न सिद्धि उनकी सिद्धि नहीं होगी, न सुखम सुख भी नहीं होगी, न पारण परमार्थिक गति भी नहीं होगी। और ये कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। पारमार्थिक कार्य के लिए व्यवस्था किसमें है? शास्त्र, सब शास्त्रों में उसकी व्यवस्था दी है, गीता भागवत रामायण उपनिषद वेद, जिस बात को कहते हैं उस बात को सही मान करके उसी पर चलते। जितनी भी लोग कट्टी पैखाना करते हैं और हार्ड होते हैं, अपवित्र होते हैं, किंतु वेदों में श्रुतियों में ये कहा गया गोबर परम पवित्र है और शंख ये हार है किंतु ये पवित्र, चमड़ा अपवित्र है किंतु मृदंग ठाकुर जी के घर में जा सकता है, तो इसी तरह से ये शास्त्र के बारे में क्यों विचार करते हैं? गोबर इतना पवित्र है ऐसे नहीं समझेंगे हम, जब वैज्ञानिक तरीके से जब देखेंगे ये शास्त्र में ये ठीक कहा गया है। स्वयं भगवान अस्थि को लेते हैं, संत बजाते हैं, भक्त लोग भी इसका व्यवहार करते हैं, इसलिए शास्त्रों की बातें मान करके ही चले गई, इसलिए चैतन्य महापुरुष कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाण से कार्याकार्य, कार्य और कार्य में जहां हमको संशय होता है शास्त्रों में जो चीज बातें लिखी हैं उसी को मानना, विशेष करके साध और साधन में तुम प्रमाण जो कुछ जो दो कहते हो उसका शास्त्रीय प्रमाण, विशेष करके श्रीमद् भागवत का प्रमाण दो। तो वही कहें प्रभु का है पर श्लोक साध्य में जीवों के लिए परम साध्य क्या है आप ये बतलाइए। ये नीचे से चल रहे हैं, क्रम से तो नहीं किंतु नीचे से चल रहे हैं। राय स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति हर अपने अपने वर्ण और आश्रम से जिसके लिए शास्त्रों में निर्धारित किए गए हैं कि वर्णों के धर्म ये हैं, आश्रम वालों का धर्म यह, जैसे ब्राह्मणों का धर्म चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और चार आश्रम है, गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी कन्यायी। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और ब्राह्मणों के कुछ कर्म निर्धारण किए, पढ़ना जजन जाजन अध्ययन अर्थात दान प्रतिष्ठा, ये जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करता नहीं कराता, सदा सत्कार संपन्न नहीं होता, भगवान का भजन नहीं करता, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण होगा ब्रह्मे विचरति सौरा, केवल उपवीत धारण करने से या ब्राह्मण के कुल में जन्मे हैं इससे नहीं। इसलिए अपने वर्ण और आश्रम, जैसे गृहस्थ है, गृहस्थ में चार व्यक्तियों का गृहस्थ ब्राह्मण भी हो, गृहस्थ ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी होगा, वैश्य भी, शूद्र, ये गृहस्थ में, और वो चार प्रकार के ब्रह्मचारी भी होंगे उन्हीं में चार, और सन्यासी भी उनमें से ही, सभी उसी में से आएंगे, और सबका रूप जो है कौन है, गृहस्थ, सबका पालन पोषण करने वाला कौन है, वो गृहस्थ ही है। इसलिए कहीं कहीं पर गृहस्थों को सब आश्रमों का और वर्णों का मूल बतला दिया,
गृहस्थ बड़े हैं या सुनना
मूल बतला है,
और जो झगड़ा करते हैं बोले हम गृहस्थ बड़े हैं,
हाँ तो ठीक है बड़े हीरा निकलता है ना, बोले की खान से तो हीरा, तो खान बड़ी है या हीरा बड़ा है, अपने अपने स्थान पर जिसमें भक्ति है वही बड़ा है। तो गृहस्थों के भी कुछ धर्म है, कोई भी अतिथि आए उसका आदर सम्मान करें, दान देंगे और भगवान का भजन करेंगे, ये सब ब्राह्मण के कुछ लक्षण हैं। कुछ वानप्रस्थियों के, कुछ ब्रह्मचारियों के, सन्यासियों के सब लक्षण हैं, इनका भी कुछ बतलाया गया है। वानप्रस्थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
और
इन सबका बतलाया गया है शास्त्रों में। अब उसमें कहते हैं स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति हर, स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति हर, हमारे वर्णाश्रम धर्म ऐसा बनाया गया है जिसमें अपने आप आचरण किया जाए तो विष्णु भक्ति होने की संभावना होती है, हो ही जाएगी कोई गारंटी नहीं, किंतु होने की संभावना नहीं भी हो सकती। तो यहां पर उसी के लिए कहा गया, श्लोक पढ़िए तो उसमें विष्णु पुराण का यह श्लोक उन्होंने दिया, बड़ा समाचार का पुरुषेण परम कुमार विष्णु आराध्य पंथा न तत्तोष कारण, इसका अर्थ यह हुआ वर्णाश्रम धर्म में जो आचरण करता है सचमुच में ठीक ठीक वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करता है वर्ण और आश्रम, ऐसे पुरुषों के द्वारा परम कुमार जो परवस्तु भगवान है, मनुष्य मात्र जो इन वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करता है उसके द्वारा, उस पुरुष के द्वारा भगवान आरभ नन्नत तक, और कोई दूसरा उपाय नहीं है यहां पर बोलता है निष्ठा उत्पन्न करने के। इसलिए अपने अपने वर्ण और आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति जो भगवान विष्णु की आराधना करता है उससे भगवान, महाप्रभु जी ने कहा कि वो बात आगे बढ़ा, ये बात क्यों कहा, पहली बात हमने पहले बताया साध्य और साधन होना चाहिए स्वरूपानुबंधी, हम जीव स्वरूप हैं इसलिए जीव मुक्ति भी इसी को कहते हैं, मुक्ति ही तो अन्य रूपम अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने का नाम ही यही स्वधर्म है। अपना धर्म है भगवान के प्रति प्रीति का। समस्त जन्मों में अपना अपना वर्ण आश्रम धर्म सब बदल जाएगा, किंतु एक चीज नहीं बदलेगा। वो क्या चीज? जैसे कोई मुसलमान है, हिंदू है, गाय है, बैल है, मनुष्य है, स्त्री है, उसके अंदर में जो प्रीति भाव है, अपने बच्चों को प्यार करना, दूसरों को प्यार करना, ये नहीं बदल सकता, ये जरूर रहेगा, किसी भी स्थिति में नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाएगा, मुसलमान हो जाएगा, मुसलमान से हिंदू हो सकता है, बौद्ध हो जाएगा, गाय बैल हो सकता है, किंतु गाय बैलों में भी अपने बच्चों के प्रति प्रीति होती है, मनुष्य में भी होती है, देवताओं में होती है, सर्वत्र होती है। ये जो प्रीति है यही यथार्थ में असल है। वर्ण और आश्रम धर्म में इसी को लक्ष्य करके ये बहुत दूर से बतलाया गया है। वैसे तो हम देखते हैं, जब विचार करते हैं, वर्णाश्रम धर्म के लिए कहा गया एक अवस्थाई आर वर्णाश्रम धर्म अकिंचन हरिया लय। वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर के भगवान का भजन करो, वर्ण और आश्रम और भी कहीं कर संत्याज्य जन सर्व धर्मान, जो अपने सब स्वधर्मों को छोड़कर के भगवान का भजन करता है उत्तम पुरुष है। सर्व धर्मान प्रत्यजमान एकम शरण, ये सब कहा गया। और यहाँ ये कह रहे हैं वर्णाश्रम धर्म का अच्छी तरह से पालन करने वाला व्यक्ति, पालन करता हुआ भगवान विष्णु की जो आराधना करता है, यही उनकी प्रसन्नता का एक मार्ग कारण है और दूसरा है। अब ये दोनों में जो भेद बतलाया, एक में कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म से नहीं होगा इसको छोड़ो, और एक कहते हैं यहाँ पर विष्णु की प्रीति से होती है। तात्पर्य क्या है इसका भी? कौन सारी कैसे हम लोग करेंगे इसका सामंजस्य कैसे करेंगे? यहां पर ये कहते हैं ये श्लोक विष्णु पुराण से है। उसके बाद ही में एक और श्लोक आया है, उसी श्लोक में है जो जब सुना श्लोका ने, उन्होंने अपने गुरु जी से पूछा, जिसको वो सुना रहे विष्णु पुराण, पूछा अच्छा ये जो वर्णाश्रम धर्म का पालन आप जो कर रहे हैं करने से, और उसमें विष्णु की आराधना होती है, उससे भगवान की आराधना हो जाती है और उसकी प्रसन्न होता है, उससे क्या होता है, उसका फल क्या है, सब वो बतला रहे। फल होगा क्या? संसार में वो व्यक्ति सुखी रहेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा, और वो चाहे ठीक ठीक पालन करे तो उसको संसार से मुक्ति भी मिल जाएगी। ये तीन चीज बता है, किंतु तीनों में से कोई भी जीव का स्वरूपान बदली नहीं है। कितना लगा?
सात दस।
सात दस हो गया। यहां पर ये विचार करने का एक बात, हिंदुओं में ऐसी प्रथा थी अभी तक, प्रत्येक हिंदुओं के घर में शालग्राम शिला इत्यादि रहती और लोग उसको ब्राह्मण को पूजा, अंततः ब्राह्मण जरूर पूजा करते, और क्षत्रिय लोग आकर के ब्राह्मणों के घर में उनकी पूजा देखते थे, उनको प्रणाम करते थे। नहीं तो अपने घर में भी ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय ये तीनों ही पूजा करने के अधिकारी थे। दीक्षा लेने के बाद
यहाँ तक कि स्त्रियों को भी तो बताया गया,
स्त्रियां तो ये लोग कर सकते हैं। शूद्रों के लिए इसमें कहा गया कि असंत शोत्र में बद्ध रहते हैं और उनको फुर्सत नहीं है, इसलिए उनके लिए नहीं कहा। किंतु यहाँ पर शूद्र का विचार करेंगे नारद विद्या से लोगों के लिए गुणगत सवलो करने के लिए योग्य। हम लोग किसी भी आलोक में देखेंगे विश्व में कहीं न कहीं सर्वत्र
हरिवंश के विलासन
किसी न किसी रूप में वर्णाश्रम धर्म जरूर है। जो लोग विद्या का अध्ययन करते हैं, जिनमें उपकारिता है, सत्यवादिता है, ये लोग ब्राह्मण स्वभाव ये लोग ब्राह्मण हैं, जो लोग युद्ध प्रिय हैं, शासन में रहते हैं, शासन करने वाले सूर्य वेद इत्यादि में भी दान देते लेते हैं, ये लोग क्षत्रिय हैं। भले इनका नाम न हो क्षत्रिय, हमारे लोगों के यहाँ ये वैज्ञानिक पद्धति से उनका नाम दिया गया, और लोगों में ये ऐसी पद्धति में ही जो नाम दिए। जो लोग दान देते हैं, कृषि पालन करते हैं, वाणिज्य व्यवसाय करते हैं, ये लोग हैं वही जो तीनों और सब लोगों की सेवा करते हैं और उससे अपनी जीविका का संग्रह करते हैं, जीविका का निर्वाह करते हैं, ये लोग हैं। इसलिए विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पर कि वर्णाश्रम धर्म नहीं है, कहीं किसी का नाम है और कहीं पर तो किसी का नाम नहीं है। तो जहां उन वर्णाश्रम धर्म में भगवान की आराधना हो तब तो वो सार्थक हुआ, तब तो भगवान उसे कुछ प्रसन्न होंगे। अन्यथा जिस वर्ण और आश्रम में हिंदुओं में भी जिन घरों में भगवान की पूजा नहीं है, विष्णु की पूजा नहीं है, शालग्राम की पूजा नहीं है, तो वो कैसा है? स्मशान। इसलिए यहाँ पर उन लोगों के लिए बातें बतलाई गई, वर्णाश्रम धर्म में स्थित रह करके विष्णु की उपासना करते हैं, उन्हीं को भगवान
समस्या
बतला रहा। ब्राह्मण होकर के भी चारों वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे स्व कर्म करते थे, चारों वर्ण और आश्रमी यदि अपने वर्णों में स्थित होकर के भी अच्छे अच्छे सब सब कामों को करते हैं किंतु भगवान की आराधना नहीं करते, विष्णु की पूजा नहीं करते, तो वो अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते, नरक में पूजा सब माता पिता की सेवा करते हैं, पति की सेवा करती है, पत्नी के प्रति उनका व्यवहार ठीक है, संसार में खूब दान लेने देने वाले कर्म जो था वर्णाश्रम धर्म का पक्का मानने वाला था, ब्राह्मणों को भी पूजा करता था, घर में ठाकुर जी भी हैं और अपनी मैया को भी खूब आदर, बिना मैया का चरण छुए हुए कहीं नहीं जाता, उसने मान लिया है उसको राधा को अपनी मैया, बिना उसके आदेश के कुछ भी नहीं करता। कुंती जी भी जाती हैं जब सुना जो मैया है उनके प्रति श्रद्धा थी, किंतु कहा कि अब मैं तुमको मैया नहीं मानता, अब तो मैया मानता हूं जिसने हमारा पालन पोषण किया उसी को मान, सीधी उसके बात थी उसने कह दिया। इतना दानी था कि प्राण के संकट आने पर भी दान करता था, मरने पर आया गया, कोई ब्राह्मण आ गया मर रहा था उसी समय में गिद्धनोति में आ रहे थे, उस समय कोई ब्राह्मण कहा आया बोला कि हमारी लड़की की शादी है, मैं आपके पास कुछ दान के लिए, अब मेरे पास तो कुछ नहीं मैं क्या दूं, मैं राजा था उस समय मैं आते दे देता, अभी अभी आपके पास नहीं और लोगों के पास मुझे और नहीं दे सकते, कभी क्या चाहिए? मुझे सोना चाहिए, मेरे पास सोना था, आपके दांत में सोना लगा, बस उसने आप स्वच्छ ऐसा मारा और दांत गया और उसकी दिया, दांत उसके सब सोने के बनाए हुए, उसे मणियां सब जड़ी हुई थी। इंद्र को अपना कवच और सुंदर जो जन्म के साथ में जन्मा था उसी दे दिया, किंतु हुआ क्या? भक्त और विष्णु का प्रयोग बस गड़बड़ हो गया था। जरासंध महाराज की भी बड़ा संधर्म का पालन किया, अपने प्राणों को दे दिया एक कबूतर की रक्षा के लिए, उनको मिला क्या? राजा हरिश्चंद्र जी अपने बात के बड़े धनी थे, अपनी बात के लिए अपनी स्त्री को शूद्र के यहाँ बेच दिया, अपने शूद्र के यहाँ बेच दिया, अपने बेटे को बेच दिया, यहाँ तक कि अपने बेटे को जब मर गया तो उसके लिए कर्तव्य से चित्त न होकर के उसके लिए भी जलाने के लिए कर मांगा, ऐसे दृढ़ निष्ठा, वर्णाश्रम धर्म के नियम ही ऐसे हैं, सत्य पड़ी गई, किंतु फल क्या हुआ? दधीति का नाम सुना, उन्होंने अपने जीते जीते गाय से चटवा कर दही और जूरा लगा करके चटवा करके जीते जी अपना हार दे दिया निर्देश किया, फल क्या हुआ? जीव का स्वरूपान बंदी मिल गई, इसलिए महाप्रभु जी ने कह दिया कि वो बात जो आगे बस आज
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाभगवन्नाय कृष्णाय कृष्णाय गौरक्षिते वंशाकल्पकल्याणसुदासभक्तैव च पतितानं पावनेभ्यो जीवों के लिए साध्य और साधन क्या है? उन्होंने कहा स्वभावाचरणे विष्णु पक्षी है, अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जब मनुष्य जिस वर्ण में है और जिस आश्रम में है उसके अनुरूप अपने आवश्यक संकल्पों को पालन करता हुआ भगवान की आराधना करता है तो उससे भगवान को महात्मा जी ने कहा तो इसका ये तात्पर्य हुआ कि विष्णु की प्रसन्नता ही यहाँ पर साध्य है और वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करता हुआ भगवान की आराधना विष्णु की जो आराधना होती है वही यहाँ पर था। महाप्रभु जी ने कहा कि ये बाह्य ये ठीक नहीं है, आगे आप कहें। साधारण रूप में हम देखते हैं कि महाराज मृग थे, वो क्षत्रिय थे राजा, तो उनका दान देना सुरता दुरता राज्य शासन दंड निग्रह इत्यादि उस राजा के लिए उचित है। ये वर्ण और आश्रम में है गृहस्थ, इसलिए उनके लिए ये उचित। एक राजा है और गृहस्थ है राजा है सक्रिय, इनके लिए उचित है शुभता वीरता दान दया और शासन। उन्होंने देखा शासन अच्छी तरह से किया, राज्य में चारों तरफ सुशासन चल रहा है, तो डकैत बदमाश लंपट एकदम चुपचाप शांत है, कुछ नहीं कर रहा, कठोर उनका शासन। और दान के लिए उन्होंने कहा था मैं रोज कोटि कोटि गायों का दान करूं, ये दान भी कर रहे हैं। और गायें ऐसे नहीं सिंह सोने से बनते थे और पैर में चांदी का फूल और अंगों में सोने के झालर लटकते हुए सुंदर बहुमूल्य कपड़े सुनहले कपड़े से ढकी हुई और ऐसी गाय जिसमें कहीं हाड़ न देखा जाए, बछड़े और बछड़ी समेत जो पूरी देने वाली गाय, ऐसे गाय को देखो, आकाश के तारे नहीं गिने जाए, कहीं गिन लिया जा संभव हो सकता है किंतु कितनी गाय उन्होंने दान की ये नहीं है, कितनी गाय दान कर ये इनका वर्ण और आश्रम के अनुसार में एक गृहस्थ का एक क्षत्रिय राजा का यह धर्म है जिसको पूरा करता है। आज तक वैसा कोई राजा नहीं हुआ जो ऐसा किया, किंतु अंत में इसका फल होना चाहिए अच्छा, इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। तो इस लोक में तो सुख को कुछ अब देखा नहीं जाता, बल्कि ब्राह्मणों का गाय के लिए झगड़ा हो गया, गाय दान कर दी और वो दान गाय दान कर दिया और उस दल में से निकल करके वो बाहर चली गई। और फिर एक इनके संग्रह करने वाले गाय के जो था वो उस गाय को फिर ले आकर के राजा को दे दिया, इन्होंने फिर दोबारा दान कर दिया। तो जिसको पहले दान किया था वो और जो दूसरा दान किया था दोनों में झगड़ा लगा, ये गाय मेरी है तो मेरी। राजा के पास में गए, राजा कहा ये आपने दान हमें दी थी गाय, ये मेरी है। वो कहता अरे अभी हमको आपने दान दी, बस खूब झगड़ा लग गया। राजा ने कहा जी इसके बदले में तुम एक गाय ले लो, तुम प्रसन्न हो जाओ। एक गाय का लाख गाय देंगे तभी नहीं, हमको यही गाय। और दूसरे ने भी यही कहा कि हम दूसरी गाय नहीं ली, यही गाय आप पृथ्वी का दान कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, तुमको गाय बड़ी मिली। दोनों जीत पर आ गए। राजा ने कहा कि सब उसको नहीं प्रसन्न कर सकते, उसको भी प्रसन्न नहीं कर सकते। और यह हुआ कि उन लोगों ने इनको अभी चंपाते जाओ तू गिरगित बन जाए, गिरगित ऐसे ऐसे कहता है और ऐसे ऐसे भी करता है, ऐसा तू बन जा, देकर के तू नहीं किया। अब वो गिरगित होकर के हजारों लाखों वर्षों तक कुएं में बहुत विशाल गिरगित होकर के पहुंचे। तो ये कर्म का फल हुआ, अच्छे कर्म का ये फल, अच्छा कर्म है तो इसका तो ये फल हुआ। राजा हरिश्चंद्र थे सत्यवादी, उस सत्य के लिए उनको अपने बिकना पड़ा, अपने पुत्र को बेचना पड़ा, अपनी रानी को एक शूद्र के यहाँ चंडाल के यहाँ और वो भी स्मशान भूमि में रहने वाले ऐसे लोगों को तो बतलाओ। तो ये कर्म जो मार्ग है इसका गुण दोष होने पर भी दोष इसके हैं। दूसरी बात साधु उसको कहते हैं चरम अवस्था में, जिसे कि भगवान को प्रसन्नता हो, चरम प्रसन्नता हो, इसमें अपनी प्रशंसा के लिए अपने सुख भोग के लिए स्वर्ग के लिए ये दिया जा रहा है। यहाँ पर माताएं दान करती हैं घरों में, कोई जाए तो कुछ दे, मिठाई दान कर दिया, कोई कुछ दे, उसका बीमार बच्चा है उसको ऐसे ऐसे आँस करके। अच्छा ये दान हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ? तो रोग दान हुआ कि हमारा बच्चा अच्छा हो गया। अब इसमें ये दान नहीं होकर के ये अपने सुख के लिए हो गया, अपना बुरा भला जो कुछ था निर्मंथन करके तुम लोग हो। तो ये तो पाप कर्म हुआ, किंतु अपने सुख के लिए इसे करते हैं और इसी को अच्छा समझते हैं। तो इस तरह से ये कर्म ही ऐसा है, ऊपर नीचे और आदि अंत मध्य है, अशुभ है। इसलिए इसे साथ जो कल्याण है ये इससे नहीं होगा, यही नहीं और भी देखा जाए जहां जहां ऐसा कर्म है वो कर्मों की गति यही है, अस्वस्थ और अफल। इसलिए इन कर्मों को महाप्रभु जी ने कहा कि इसके द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होते, उसमें अपने वर्ण और आश्रम के कर्मों से वहां उसमें एक प्रसन्नता की क्षीण लहर है, वो है क्या है? यदि विष्णु की उपासना करता है, किंतु वो विष्णु की उपासना भी करता है, यही ठाकुर जी उपासना जब हो जाएगी, ठाकुर जी हमारा घर सब अच्छा है, हमारे दुख दारिद्र दूर हो, वो भी अपने लिए मांग लेता है, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नहीं, दे देते हैं किंतु प्रसन्न अपने लिए मांग लिया। इसलिए ये कहते हैं महाप्रभु जी, यो बात जो आगे कहा इसमें धर्म कर्म नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं ना कर्म लोग, विष्णु के प्रसन्नता के लिए विष्णु की भी प्रसन्नता करते हैं, ठाकुर जी को फूल देंगे, माला देंगे, उनके चौपट को ऐसे ऐसे करते हैं ना, दबाते हैं चौपट को, रंगेश्वर में चौपट को दबाते हैं,
दबाते हैं लोग,
किस लिए करते हैं? अपने लिए, भगवान के लिए कुछ नहीं। महाप्रभु ने जैसा कि आत्मा से इसका कोई भी संबंध नहीं है आगे से भी कहा, क्यों? संसार के अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में ऐसा ही करते हैं, अधिकांश लोग जो धर्म कर्म नहीं भी जानते हैं तत्व से, और ऐसे करने वालों को लोग कहते हैं कि ये बहुत भक्ति करती है, कि भक्ति करना है साधारण, इसलिए इसे भक्ति का भगवान के मैंने आत्मधर्म से इसका कोई भी संबंध नहीं, इसलिए इसको कहा। बताओ इसको प्रभु कहे यो बात के आगे कहा, राय कहे कृष्ण कर्मात्मा सब सब प्रसाद। फिर राय रामानंद ने कहा कि कृष्ण कर्मार्पण, जो कुछ करो कर्म वो कृष्ण को अर्पण, उसका फल लेकर के भगवान को अर्पण कर दो। और सर्वसाधता समस्त साधनों का ये सार है। इसमें एक बात है, कृष्ण का कर्म अर्पण या उसका फल अर्पण करना ये साधन है ना साध्य है? और ये तो साधन है ना, अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पण करना ये है साधन। किंतु इनको कह रहे हैं सर्व साधनता, इसका तात्पर्य यही है इसके द्वारा जो फल मिलता है वो साध्य है। अब इस पर हम लोग विचार करें। महाप्रभु जी ने कहा हो बाह्य आगे का, ये भी बाहरी है, ये भी आत्मा में संबंधित, ये कोई फर्म नहीं। अब इसी पर चलते हैं। आप लोगों को याद होगा श्रवणम श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति के नवलक्षणा क्रियेत भगवती अध्यासन मन्य अतीत। श्रेणकत्व ने कहा तुमने जो अध्ययन किया इसमें से सार तुमने क्या समझा वो थोड़ा सा हमको बतला दो। तो वो कह रहे हैं अधीत जो ऐसा अधीत माने अध्ययन किया है अतः जो समझता है कैसा विष्णु के लिए जो के संबंध में जो श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन आचलन अर्जन बंधन दास्य सप्त अत्रीय नौधादी वस्तु यदि इति पुंसार्पिता भक्ति ये नौलक्षणा भक्ति यदि भगवान के चरणों में अर्पित करके तब करते हैं तब तो ये भक्ति है। अर्पित किया नहीं तो भगवान का कथा सुनना भी ये नहीं। यहाँ अर्पित मैंने क्या इसको समझिए, यहाँ पर अपने को अर्पित करो ये मैं आपका हूं और आपके प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा मैं, ये जो आपका अर्पण कर रहा हूं इससे आप प्रसन्न हो, हम बदले में कुछ चाहते नहीं। इसलिए अपने को ही अर्पण जिन्होंने कर दिया और करने के बाद में जो करते हैं तब तो भक्ति होगी अन्यथा भक्ति नहीं होगी। भागवत की कथा सुनने से ही ये भक्ति नहीं हो जाएगी, कब होगी? यदि अपने को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, पहले गुरु भगवान के यहां अपने को अर्पित करो, भगवान कभी मिल नहीं रहे तो गुरु रूपी जो भगवान है जो हमको ले जाना चाहते हैं उनके चरणों में अपने को अर्पित, मैं तुम्हारा हूं, यदि मैं उनका हो गया तो मेरा वस्त्र उनका हुआ कि नहीं,
सब
हमारा चश्मा उनका हुआ कि नहीं, यदि मैं ही हमारा घर उनका हो गया कि नहीं, हमारे जितने परिवार के लोग हैं सब उनके हो गए कि नहीं, यदि पहले मैंने अर्पण कर दिया इसलिए हमारा सब कुछ उनका हो गया, इसलिए मेरा किया हुआ जो कुछ है वो भक्ति हो जाएगी। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, समर्पित आत्मा नहीं है, वो लाभ करते हैं उत्पाद परिवेव या कुछ सुकृति होकर के पीछे पीछे फिर गुरु के चरणों में शरणागत होकर के दीक्षा इत्यादि लेकर के सकते हैं। इसलिए कहते हैं उस श्रेणी की तो ये है नहीं, अभी जो कहा कर्म आचरण, ये जो कर्म आचरण है पहले कर्म करके तब उसको अर्पण कर रहे हैं, एक ये स्थिति, और एक है पहले अपने को अर्पण करके तब फिर कर्म करो, ये दो बात है। जो लोग पहले अपने को अर्पित करके जो भक्ति का कर्म करते हैं उनकी तो भक्ति हो गई, और जिन लोगों ने अभी ऐसा नहीं किया, एक आम का पेड़ लगाया ये कर्म है ना, उसके यहां पर बतला रहे हैं यज्ञ करो की गीता का यज्ञ करो की यदस्नाति यज्ञोषी ददासी तत् जब तपस्या कौंतेय तब गुरुत्व मदर्पण, तुम जो कुछ करते हो जो कुछ स्नान की खाते हो भोजन करते हो यज्ञ होती जो तू हवन करते हो ददासी जो कुछ तुम देते हो जब तपस्या जो तुम परिश्रम करते हो, तपस्या मैंने यहां पर कभी पूछा है, जो कुछ परिश्रम करते हो तपस्या करते हो कौनते वो पुरुष मद अर्पणम, मद अर्पणम पुरुष मुझे अर्पण। इसमें एक और भी बात है, भगवान को जब तुम शराब पीते हो तो भगवान को पहले शराब दे दोगे, चाय पीते हैं हम तो भगवान को पहले चाय देकर के उसमें तुलसी पत्ता देकर के पियेंगे, बंगाल में लोग मछली खाते हैं तो उसमें भी तुलसी देकर के भगवान को अर्पण किया जाएगा, इसलिए ऐसी चीजें अर्पण नहीं करनी है। शास्त्र विधि शास्त्र में जिन चीजों को भगवान को देने के लिए आदेश दिया ऐसी सात्विक वस्तुओं को भगवान को अर्पण किया जाए, तब तो ये कुछ कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा भक्ति हुई, अन्यथा भक्ति भी नहीं होगी। जिसको कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति, भक्ति तो नहीं किंतु उसमें आरोप किया जा सकता, तो वो सब जगह आरोप नहीं किया जा सकता, सब कर्मों में जिसको वेद शास्त्र पुराणी स्मृतियां जिसको कहते हैं सब कर्म जिन्होंने व्यवस्था की है जीवों के लिए, ऐसे कर्मों का फल ही भगवान को अर्पण किया, तब तो ये कर्म विश्रा हुआ। किंतु ये यज्ञ करो कि अच्छा या बुरा जो कुछ तुम करते हो जदस्नासी जो कुछ खाते हो यज्ञ होती, इसमें प्रतिबंध नहीं लगाया गया, जो शास्त्र स्तुति और स्मृतियों के द्वारा कहे गए वे बीज कर्मों का ही फल भगवान को दो जिसमें नहीं है, इसलिए ये तो वो जो आरोप सिद्धा बतलाया कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा भक्ति वो भी नहीं है ये। इसलिए कहते हैं जो लोग अनन्य भक्ति के अधिकारी नहीं है, अनन्य भक्ति के बाद छोड़ दो, जो औपाधिक भक्ति जो आरोप सिद्धा और कर्म सिद्धा भक्ति है उसके भी अधिकारी हैं। यकीन के लिए है जगत में तीन प्रकार के रूप मान लिया गया, एक रूप कुछ भी अच्छा बुरा भला कुछ नहीं जानता है, वो लोग वैदिक कर्मों को नहीं करते, भगवान का अर्पण करेंगे कुछ इसका प्रश्न नहीं है, वो तो अज्ञ है क्या अर्पण करेंगे। दूसरे होते हैं नास्तिक, वो जानते तो सब कुछ है किंतु उसमें विश्वास है वो करते नहीं। नास्तिक लोग जानते हैं, लोगों कहते कहाँ जा रहे हो तो जमुना में स्नान है, जमुना में स्नान कर गंदी पड़ी हुई है जमुना, उसमें जाएगा तो उनको रोग इत्यादि हो जाएंगे। जमुना में क्या है, जैसे नदी नाले हैं वैसे भी नदी नाला है, ऐसा मत कहो। कहते हैं सब कहते हैं जमुना कोई देवी है, वो कहता है ये देवी है, उनका सदी नहीं है। नास्ती जो ईश्वरो नास्ती वेदा नास्ती, ईश्वर नहीं है वेद नहीं है वो लोग हैं नास्ती, उनके लिए ऐसे कर्मों की कोई भी आवश्यकता नहीं, वो करनी है। और जो अज्ञ व्यक्ति हैं कुछ भी नहीं जाते दिशाओं में एकदम लवली है, उनके लिए भी भगवान के अर्पण के लिए कोई बात नहीं। और तीसरा है अनन्य वाले, अनन्य जो भक्त हैं वो तो जानते हैं किंतु उनको भी उनके लिए ये नहीं कहा गया जब करो। अनन्य भक्ति वाले तो भगवान के लिए अपने को समर्पण करके और सब करेंगे, सब भक्ति का कार्य श्रमणम सतनम विष्णु स्मरण इत्यादि करेंगे, गुरु के यहाँ दीक्षा मंत्र लेकर के विधिवत भगवान से संबंध ज्ञान रख करके अपराधों को दूर करके भगवान का भजन करते हैं, उनके लिए नहीं। इनके लिए किनके लिए है, नास्तिक भी नहीं है और संत अज्ञ भी नहीं है, किंतु अभी कुछ संस्था उदित होने जा रहे हैं, कुछ कुछ उनके संस्कार हैं, वो साधु गुरु वैष्णव की बातें कुछ कुछ उनमें समझने लगे हैं। ऐसे लोगों के लिए कहते हैं अच्छा भाई तुम नहीं कर सकता तो एक बात करो, तुम जल करो कि जो कुछ भाई चाहते हो वो भगवान को अर्पण कर दो, जो खाते हो कर दो, जज होती जो हवन करते हो, जो कुछ देते हैं उसको, जब तपस्या जो कुछ तपस्या करते हो वो हमको ही अर्पण कर दो। कृष्ण जानते हैं ऐसा करते 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 साधुओं का संग होगा और फिर समझ बूझ करके वैदिक वेद विहित कर्मों का फल ही वो हमको पीछे से देगा, अब ऐसी अज्ञता नहीं रह जाएगी। पहले इतना तो करे तो संसार वाले इतना तो पहले करेंगे, जो कुछ करते हैं मुझे देवता देवी को नहीं और दूसरे को नहीं, किसको मत अर्पणम, मत माने मुझे दो, माने कृष्ण को यहां पर देख रहा है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति साधारण नहीं, किंतु अभी प्रारंभिक है भगवत भजन के लिए, बहुत प्रारंभिक, अभी भजन सजन सिद्ध नहीं है, पहले अपनी असत करनी थी है, किंतु धीरे धीरे साधुओं के संग में आने पर अपने कर्मों का अर्पण करते 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 तक ऐसा हो। इसलिए कह रहे हैं सुबह पुरुष जब तपस्या पहुंचेय पुरुष समद अर्पणम, भारत में भी ऐसा कहा गया। एक आया है ऐसा क्यों, नेह जप कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते और एक ऐसा और है तावत कर्माणी पूर्वी निर्विदेश जावता मत तथा क्षणादो वा श्रद्धा जाऊ न जाए, तावत कर्माणी पूर्वी कर्म कब तक करो, कब तक हम लोगों को कर्म करना चाहिए,
जब तक कर्म से
मुक्ति न हो, कर्म से कभी भी कल्याण नहीं होगा उससे बंधन में हो जाए, चाहे शुभ कर्म करो अशुभ कर्म करो, तो एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी है। अच्छा कर्म करोगे उसके भोगने के लिए फिर तुमको जन्म लेना पड़ेगा, और बुरा कर्म करो तो उसका दंड भोगने के लिए फिर तुमको आना पड़ेगा, इसलिए वो बेड़ियां दोनों हैं। एक सोने की बेड़ी अच्छी देखने में सुनने में लगती है किंतु वो भी बेड़ी है, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी कौन अच्छा,
दोनों ही
बेड़ी है, किंतु लोग कहेंगे सोने की बेड़ी अच्छी होती है क्योंकि कीमती है ना,
चिंती होने से वो और बंधन है। इसलिए कर्म मात्र ही बंधन है। गीता में कहा गया है ना, यज्ञार्थात कर्मणो लोकनत्त कर्म बंधन तथा कौन संधेय मुक्त संग समाज। मुक्त संग मैंने कर्मों में आसक्ति छोड़ करके शास्त्र विहित कर्म है वो मेरे लिए करो तो ये यज्ञ होगा। शास्त्र विहित नहीं होगा तो वो यज्ञ नहीं होगा। निष्काम कर्म अर्पित कर दो भगवान, तब तो होगा। कर्मों का फल छोड़ करके इसका क्या अच्छा या बुरा फल है छोड़ दो, और छोड़ करके जैसे एक लड़की की शादी करना है संसारी, अब उसके फल में आसक्ति छोड़ करके अपने कर्तव्य के लिए उसकी शादी, यदि वो निष्काम कर्म होगा और उसका फल भगवान को अर्पित कर दिया जाएगा तो एक तरह से ये यज्ञ, इसी को कहते हैं कन्यादान। ये यज्ञ हुआ, यज्ञ कराता है ना, ये यज्ञ उसी तरह से और सब चीजें। यदि उसमें से अपने कर्मों का फल नहीं छोड़ा, आसक्ति नहीं छोड़ा, तो वह जन्मबंधन में कर्म, वो जिसको तुमने कन्यादान दिया है वो तुमको कन्यादान के लिए तुम कन्या बनेगा और तुमको वो यदि ये कर्म फल नहीं करना। इसलिए ये कहते हैं ये कर्म नैष्कर्म भी अच्छी प्रभाव वर्जित है न शोभते ज्ञान बलम निरंजन अकारण। जिस प्रकार से निष्काम कर्म है उसमें कोई भी मल नहीं है,